अटल जी सबको साथ लेकर चलते थे। आदमी की परख उनको थी, किस आदमी को कहाँ लगाना है ये प्रबंधन उन्होंने अच्छी तरह किया। उनकी सोच थी कि जब तक अच्छी तरह देश का विकास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। पांचजन्य के सागर मंथन सुशासन संवाद में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक से वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा की बातचीत के अंश। अटल जी के साथ आपका जो संवाद रहा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, आप उसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं पांचजन्य का आभार व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम गोवा में रखा और इस राजनीतिक मंथन को, सामाजिक मंथन को सबके सामने, गोवा वालों के सामने पेश करने का और सुनने का एक मौका आपने दिया। अटल जी के बारे में कितना भी कहें, मेरे ख्याल से वो कभी पूरा नहीं होगा। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम दिया, उस समय मैं विभाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम कर रहा था। जब मैं पणजी तहसील का संचालक था, तब एक दिन अचानक मुझे कहा गया कि आपको कल से भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। हम कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में जाएंगे, लेकिन वरिष्ठ की आज्ञा का पालन तो करना ही था। जब मैं संघ का काम कर रहा था, उस दौर में जब अटल जी भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए गोवा आते थे, तब हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाती थी। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि जब अटल जी आए तो जाने तक उनके साथ रहना, उनकी सिक्योरिटी देखना, अच्छी तरह और एकदम नजदीक से वार्तालाप करने का मौका पार्टी में आने से पहले भी मिला। इस नेतृत्व को हम दिल से मान चुके थे और उसके बाद में काम करते करते पार्टी की जिम्मेदारी आ गई। पहले मैं 1988 में गोवा में महासचिव बना, बाद में गोवा राज्य का अध्यक्ष भी बना और 1999 में मुझे कहा गया कि आपको संसदीय सीट से चुनाव लड़ना है। वो भी मान दिया गया और मैं गोवा के लोगों का बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ काम किया हो, गोवा के लोगों ने 34 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को पहले 4 विधायक दिए, उसके बाद 10 हुए, उसके बाद 18। 1999 में जब मुझे कहा गया कि संसदीय सीट लड़ना है, तो जिस तरह से अटल जी ने हमारे अन्य नेता आडवाणी जी, जोशी जी, प्रमोद जी, मुंडे जी, इन सब में जोर लगाया, उन्होंने हमको काम की जो सीख दी थी, उसके आधार पर 1999 में हम पहली बार जीत कर आए और जीतने के बाद दिल्ली गए। ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। सांसद होने के बाद उसी टर्म में मंत्री बनेंगे, ये भी कभी नहीं सोचा था। अटल जी ने मंत्री भी बना दिया और एक के बाद एक करके कृषि से वित्त तक 5 मंत्रालयों तक पहुंचा दिया। उनका जो मार्गदर्शन मिला, उनके व्यवहार से जो हमें सीख मिली, हम शब्दों में इसका वर्णन कर नहीं सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की गोवा में जो स्थिति है, यह अटल जी की बदौलत है। भारतीय जनता पार्टी 1999 में जो सीटें जीती, उस सीट से दूसरी बार कभी नहीं जीता, ऐसा इतिहास है। लेकिन मैं अटल जी और अन्य सभी नेताओं के आशीर्वाद से 1999 से आज तक 5वीं बार चुनकर आया हूँ। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? यह अटल जी की सीख थी कि किस तरह से राजनीति में हमें क्या करना है। राजनीति हमारे लिए ऊपरी चीज है, लेकिन समाज को किस तरह बदलना है, समाज में किस तरह से रहना है, यह उन्होंने सिखाया। यही कारण है कि आज गांव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आपने पूछा कि किस तरह संवाद होता था, तो संवाद में अटल जी अग्रसर थे। संवाद नहीं तो कुछ छोटा भी काम हो, हम तो छोटे मंत्री थे। मैं एक राज्य मंत्री था। जब मैं कृषि मंत्रालय में था, तब मैं एक बार शनिवार को गोवा आया था, तो अटल जी का फोन आ गया। वे मुझे गोवा नरेश कहते थे। उन्होंने पूछा कि कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है? बोले, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि आपको उनके साथ जाना है, HRD में जाओ। मुझसे पूछा कि आपका क्या कहना है। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सीधे ही ऐसा कह सकते थे कि आप जाओ, लेकिन आपस में रिश्ता रखने का उनका तरीका था। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हैं आप, जाना चाहते हैं? मैंने कहा कि अटल जी, मुझे कृषि में थोड़ा सा काम है, कुछ नए प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा बोलने के बाद मुझे वहाँ ही रख दिया और इस तरह से छोटी छोटी बातों भी सबको साथ लेकर, सबको बराबर लेकर वो चलते थे और उनके इसी आदर्श से हम आज भी चलते हैं। आप सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। राजग की सरकार में बहुत से सहयोगी दल थे जिनकी अपनी मांग होती थी। अभी आपके पास बहुत से मंत्रालय हैं, पर्यटन है, सड़क है, जहाजरानी है, ये बहुत से काम अटल जी के समय भी थे। वो क्या सोच थी, क्या दबाव था? आपने नजदीक से देखा होगा कि विकास का काम आगे रखना है, देश को पहले रखना है, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाना है। इस तरह के काम को लेकर उनकी क्या सोच थी और क्या चुनौतियां थीं? आज हम क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से देश का विकास होना चाहिए था, उस तरह नहीं हुआ। इसीलिए विकास को लेकर हमें आगे जाना है। इसलिए उन्होंने जो नई परियोजना शुरू हो सकती थी उसी समय शुरू कर दी। इसके आगे मैं कहूंगा कि यदि देश का विकास करना है तो हमको सबसे पहले देश का बुनियादी ढांचा बढ़ाने का काम पूरा करना पड़ेगा। मैं जब कृषि में था उस वक्त मुझे बोला गया कि आपको इसे छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग में जाना है। आदमी की परख उनको थी, किस आदमी को कहां लगाना है, ये प्रबंधन उन्होंने अच्छी तरह किया। उनकी सोच थी कि जब तक अच्छी तरह देश का विकास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने उस समय नए नई परियोजनाएं शुरू की थी। इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। आज पूरा नेटवर्क सभी जगह का, चाहे सागरमाला हो, पोर्ट का विकास हो, राजमार्गों का विकास हो, उन्होंने उसकी नींव डाली थी। आज हम उसका घर देख रहे हैं। आज एलोपैथी के स्तर का पूरे देश में आयुष का बुनियादी ढांचा बन रहा है। हाल ही में 3 बड़े इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। भारत के ऋषि मुनियों ने जो पद्धति तैयार की थी वो आज पूरे समाज में जा रही है। कोविड काल में जिस तरह से इसने काम किया है उससे दूसरे देश आज मान कर रहे हैं कि इसे हमारे देश में आने दो। आयुर्वेद पद्धति हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को यदि हम अपना लें तो निश्चित तौर से पूरा भारत निरोगी बनेगा। उस समय भी पर्यटन को लेकर और धार्मिक पर्यटन को लेकर जोर था, जिस पर इस सरकार ने भी जोर दिया है। पर्यटन को लेकर इस दौरान आपने क्या कुछ परिवर्तन देखा और क्या योजनाएं आगे समय के लिए हैं? सभी मंत्रालयों में एक नई जान डाली हुई है। किस तरह मंत्रालय को काम करना है, हमें कहां पहुंचना है, देश का उद्धार हो, देश का विकास हो, ये सारी बातें हैं। उन्होंने सर्किट बनाए, रामायण सर्किट हो, महाभारत सर्किट, बुद्धा सर्किट, अंबेडकर सर्किट, ये विचार उस समय उनका था। इसका क्रियान्वयन आज मोदी सरकार कर रही है। सबको जोड़ना, हमारी संस्कृति को जोड़ना, अध्यात्म को जोड़ना। इस तरह जब पर्यटन बढ़ेगा तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस तरह काम उस वक्त शुरू हुआ था, आज वह काम पूरा हो रहा है। लेकिन उनकी सोच थी कि जब हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तभी हमारा नाम भी पूरी दुनिया में जाएगा और हमें उसका फायदा भी मिलेगा। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ बदलाव देखा है पिछले 2-3 सालों में और चुनौतियां क्या थी? पर्यटन मंत्रालय ने बहुत काम किया है। हमारी स्वदेश दर्शन योजना में पूरे देश में टूरिज्म के जो स्थान हैं, स्वदेश दर्शन योजना के जरिए उसका विकास किया गया। पर्यटकों को वहां जो भी सुविधा चाहिए, जब तक वो सुविधा निर्माण नहीं होगा तब तक पर्यटक वहां कैसे आएंगे? इसलिए इस योजना के जरिए सभी सुविधा उस स्थान पर देने की व्यवस्था की है। दूसरी प्रसाद योजना है। हमारे जो प्राचीन स्थल हैं, जिन्हें एसआईबी देखती है, वहां विकास करने का काम प्रसाद योजना के जरिए होता है। तीसरी योजना आइकॉनिक स्थलों के विकास की है। बाकी त्योहार मेले के लिए वित्तपोषण करते हैं। पर्यटन में जितना विकास होगा उतने विदेशी पर्यटक हमारे देश में आएंगे और इससे देश की प्रगति में निश्चित तौर से मदद मिलेगी। आज पर्यटन से सभी राज्यों का भला हो रहा है, चाहे वो विपक्ष शासित हो। आपने आयुष मंत्रालय संभाला। आयुष मंत्रालय ने कोरोना में एक बड़ा संबल प्रदान किया। उसमें किस तरह का विकास देखते हैं? आयुष मंत्रालय अटल जी के काल से ही था। पहले ये स्वास्थ्य मंत्रालय का एक विभाग था। कुछ 100 करोड़ रुपये का बजट होता था, उसमें से 50 करोड़ भी खर्च नहीं होते थे। तब यह अल्टरनेटिव मेडिसिन नाम से ही था। जब अटल जी आए तो उन्होंने उसको आयुष नाम दिया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब कार्यभार संभाला उस समय से दिल्ली में 2 वर्ष में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुई। कोरोना के दौर में इसमें थोड़ा विलंब हुआ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने आयुष मंत्रालय अलग किया, फिर वो योग को पूरी दुनिया में ले गए। आज विश्व में लगभग 200 देश हर दिन 21 जून को योग करते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, योग अब पूरे विश्व में स्थायी है। दुनिया को कुछ देने की हमारी परंपरा है। ये परंपरा माननीय मोदी जी ने भी चला दी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि जब आयुष मंत्रालय बना तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी और 7 साल से भी ज्यादा अवधि के लिए दी, पूरी वित्तीय ताकत दी, पूरा समर्थन दिया और आज हमने 120 से अधिक जिला अस्पताल खोले हैं। हमने योजना बनाई कि हर जिले में आयुष का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, भले ही वह आयुष हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो। जिस राज्य ने जो चाहा वो हमने दिया। आने वाले 2-4 वर्षों में जिले में एक हॉस्पिटल 50 बेड का हो जाएगा। गोवा में 2 जिले हैं, हमने 2 हॉस्पिटल स्वीकृत किए हुए हैं। 11 तारीख को प्रधानमंत्री यहां आए थे। उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया। आज एलोपैथी के स्तर का पूरे देश में आयुष का बुनियादी ढांचा बन रहा है। हाल ही में 3 बड़े इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। भारत के ऋषि मुनियों ने जो पद्धति तैयार की थी वो आज पूरे समाज में जा रही है। कोविड काल में जिस तरह से इसने काम किया है उससे दूसरे देश आज मान कर रहे हैं कि इसे हमारे देश में आने दो। आयुर्वेद पद्धति हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को यदि हम अपना लें तो निश्चित तौर से पूरा भारत निरोगी बनेगा। गोवा को आपने कितना बदलते देखा, भारतीयता के साथ कितना जुड़ते देखा। 19 तारीख को गोवा लिबरेशन डे भी मनाते हैं और आज हम सागर मंथन कर रहे हैं। गोवा को आपने कितना और भारतीय होते देखा। लोगों की आस्था आज गोवा में भी बढ़ गई है। लोग सोचते थे कि ये अलग तरीके का राज्य है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई सबको पता चला कि यह भी कुछ अलग है। जिस सेक्युलरिज्म की बात अटल जी ने कही, सचमुच इसका पालन और इसका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबका देश भारत है, हम सब भारत माता के सुपुत्र हैं। हमारी यह विचारधारा आज लोग पसंद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू भी हैं और ईसाई भी।